श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 6 और 7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन स्विकारम उदाहरतम। तो इस श्लोक में भगवान क्षेत्र अर्थात शरीर के समास मतलब संक्षेप में भगवान बता रहे हैं कि इसकी विकार क्या है और किन चीजों से बना है, इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं और इसमें क्या इसके अवयव हैं, किन वस्तुओं से बना है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो ध्यान देना होगा कि जो कर्म का क्षेत्र है वो ना सिर्फ मानसिक रूप से है, ना सिर्फ शारीरिक है अपितु मानसिक भी है। तो शरीर और मन दोनों को मिलाकर के जीव इस कर्म क्षेत्र को भोगता है समझता है। तात्पर्य, महर्षियों वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है, अर्थात वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये संसार किन वस्तुओं से बना है उसको समझा जाता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये पंच महाभूत हैं। एक शब्द इसमें स्पष्ट है, महाभूत मतलब तत्व बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। कुछ समय पहले कि मैं आ रहा था और मैं धरती को ही देख रहा था तो उसमें विचार कर रहा था कि कितने सारे अणु हैं इसमें, कितनी बड़ी मात्रा में धरती उपलब्ध है। उसी प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में जल अग्नि वायु और आकाश उपलब्ध हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। अव्यक्त अवस्था आती है अर्थात देखिए ये दिखाई नहीं पड़ता है, अहंकार बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था को महतत्व कहा जाता है। महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वचन, तो ये जो अव्यक्त है अर्थात ये प्रकट नहीं है तो इसको ये महतत्व का सूचक है, महतत्व को अव्यक्त कहा जाता है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीव तथा त्वचा, जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन इनपुट इस जगत से जो जगत की जो अनुभूति है उन इन पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है। फिर पांच कर्मेंद्रियां वाणी पांव हाथ गुदा तथा लिंग हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कर्म करता है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। ये तो समझाने वाला कुछ बात नहीं है, आप समझते हैं कि मन के द्वारा इन सभी इंद्रियों का नियमन होता है। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय हैं गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। ध्यान देना होगा कि पांच विषय किन इंद्रियों के हैं, ज्ञान इंद्रियों के, अर्थात गंध है कौन से विषय होगा, गंध होगा नाक का, स्वाद होगा जीभ का, रूप होगा नेत्रों का, स्पर्श होगा त्वचा का और ध्वनि है कान का। तो इस प्रकार से ये विषय हैं जिनका उपभोग ये पांच इंद्रियों के द्वारा जीव करता है, मन के संपादन के द्वारा, मन के साधन के द्वारा। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। बेसिकली समझ में आ रहा है कि ये कार्य क्षेत्र क्या है, पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, उसके बाद पांच महाभूत जिनसे कि हमारे जो इंद्रियों के विषय बनते हैं, पांचों इंद्रियों के विषय और बुद्धि अहंकार और अव्यक्त यानी कि महतत्व। तो ये 24 तत्व हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतःक्रिया विकार हैं, जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए कि इच्छा द्वेष सुख और दुख ये मन के विकार होते हैं और ये स्थूल देह जो हमारा भौतिक शरीर है इसके द्वारा व्यक्त होते हैं। समझ में आ गया? हमारा जो भी मन में इच्छा है, द्वेष होता है, सुख और दुख होता है, उसको हम लोग अपने बाह्य शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और मन, बुद्धि और अहंकार में चेतना होती नहीं है, लेकिन हमारी चेतना मन, बुद्धि, अहंकार के छलनी के द्वारा प्रकट होती है। जैसे करंट हमें दिखता नहीं है, लेकिन करंट का प्रभाव बल्ब के माध्यम से इस जगत में प्रकाशित होता है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं, अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि भी सम्मिलित रहता है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हैं। जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीन गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। मुश्किल है इसको समझना और इसकी अगर विशद व्याख्या करने का हम प्रयास करें तो फिर हमें श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद को लेना पड़ेगा, जहां पे इसको डिटेल में समझाया गया है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो अहंकार होता है वो तीन प्रकार का होता है। अहंकार रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार और सत्वगुणी अहंकार। तो ये जो अहंकार है यह भी ये विभिन्न प्रकार के इंद्रियों को और अन्य तत्वों को जन्म देता है, और इसमें से तामसिक जो अहंकार है वो पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकट करता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। इसमें हम बहुत अधिक प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि भगवान भी संक्षेप में बता रहे हैं और प्रभुपाद जी भी संक्षेप में ही इसका तात्पर्य दिए हैं। इसका ये जो विषय है ये मुख्य रूप से कपिल देव जी ने अपने सांख्य दर्शन में प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में। तो यदि कोई इसमें अधिक रुचि रखना चाहते हैं तो वो तीसरे स्कंद को उनको पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। देखिए अभी मैं ही बात बोल रहा था, भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र इससे भिन्न रहता है। ये अच्छी बात है। एसेंस जो हमें सीखने वाली बात श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये है कि ये क्षेत्र के जो विकार हैं और ये क्षेत्र भी शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और इसके जो भी विकार हैं ये क्षणिक हैं, ये परिवर्तनशील हैं, लेकिन मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ ये अपरिवर्तनशील है। और इस प्रकार से अपने को इस शरीर से भिन्न देखने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए और इसके विकारों से भी अपने को भिन्न देखना चाहिए। तो इससे हम वैराग्य को जन्म दे सकते हैं, ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और अगर हम अपने कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र से ही अपनी पहचान करते रहेंगे तो हमारा जीवन अज्ञान में बीतेगा। अब इसके बाद भगवान बताएंगे 8, 9, 10, 11, 12 में कि ज्ञान क्या है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान की शुरुआत होती है अपने को शरीर से पृथक देखने से के द्वारा। तो इस चीज को भगवान आगे के श्लोक में जरूर समझाएंगे कि यह ज्ञान है और बाकी कुछ जो भी हम सोच रहे हैं जिसका आधार ये हो कि मैं शरीर हूं वो सब अज्ञान है। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे कुछ हो, अगर उस ज्ञान से ये जो तत्व भगवान बता रहे हैं अभी आगे के श्लोकों में बताएंगे, अगर उसका पोषण नहीं होता है तो वस्तुतः हम अज्ञान ही इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे कितना भी समय अपने जीवन में बिताएं, चाहे उसके हम कितनी भी लीपा पोती कर लें, वस्तुतः वह ज्ञान है। तो हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे।